ओम शांति। आदरणीय दशरथ भाई जी का इस डायमंड हॉल के महासभा में और सभागार में हम दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत है आदरणीय भाई जी का। जो कल था उसे भूल कर देखिए, जो आज है उसे सफल करके देखिए। आने वाला पल खुद ही सवर जाएगा, बस जिंदगी में स्वस्थिति और सेवा का बैलेंस रख कर देखिए। इसी विषय को लेकर हम सभी के समक्ष पहुंचे हैं आदरणीय परम श्रद्धेय दशरथ भाई जी। भाई जी को बाल्यकाल से ही विशेष आध्यात्मिकता में रुचि रही, बचपन में ही ज्ञान प्राप्त किया और बचपन से ही इस बाबा के यज्ञ को अपना यज्ञ समझकर उन्होंने इस ज्ञान को जीवन में धारण करके बाल्य अवस्था में ही इस संस्था के लिए अपना जीवन बलिहार करने के लिए निर्णय लिया। साकार बाबा की पालना ली हुई विशेष रतन आप है। मुख्य प्रशासिका दादी जानकी जी के आप पालना में पले, उनके विशेष स्टूडेंट रहे। वर्तमान समय रूरल डेवलपमेंट विंग के महाराष्ट्र के कोऑर्डिनेटर है। आप एक मुख्य पत्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं और आपकी विशेषता और सेवा ई टीवी मराठी चैनल पर भी आप देते रहते हैं। ऐसे आदरणीय भाई जी का फिर से एक बार स्वागत है और विषय है स्वस्थिति और सेवा का बैलेंस।
ओम शांति। आपने तो हमारा स्वागत किया, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो आज इस सभा में उपस्थित हुई जो भी सारी आत्माएं हैं, वो आत्माएं महान आत्माएं तो अवश्य है, क्योंकि बाप दादा ने अनेक बार आप सभी का, हम सभी का जो उद्देश्य किया हुआ है वो महान आत्माओं के रूप में हमको देखा हुआ है और कहा हुआ है, तो हम सचमुच महान आत्माएं हैं। इसकी परख क्या है, किस बात से हम समझेंगे कि सचमुच हम महान आत्माएं हैं? उसकी तो अनेक सारी परख होती है, लेकिन महान आत्माओं के साथ साथ हम सभी भाग्यशाली आत्माएं भी विशेष रूप में हैं। तो हम सभी विशेष भाग्यशाली आत्माओं का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद मानते हैं। और भाग्यशाली आपको मैं क्यों कहूं, क्योंकि जापानी लोग जो है ना, तो जापानी लोगों को बहुत बड़ा गरूर है, उन्हें बड़ा अभिमान होता है कि सूरज जब आता है आसमान में, जब सूरज उग आता है तो पहली किरण हमारे देशवासियों के ऊपर पड़ती है। अभी उस सूरज की किरण भले उनके ऊपर पड़ती है, लेकिन हम सारे इतने भाग्यशाली है कि स्वयं नूरे जहान परमपिता परमात्मा की इस कल्प में और इस सीजन में पहली दृष्टि हम सभी को मिलने वाली है। इसीलिए हम परम भाग्यशाली है। क्या हमारे भाग्य का वर्णन करना, ये भाग्य भी ऐसे ही प्राप्त नहीं होता है। जिसको जो भी भाग्य प्राप्त होता है तो उसके पीछे कर्मों का बहुत बड़ा संचय होता है। पुण्य की गठरी जिसकी बड़ी भरी होती है उन्हें ही ऐसे भाग्य प्राप्त होते हैं कि बिल्कुल पहली बार हमारा इस मधुबन में आना और परमात्मा का भी आना, दोनों का मिलन होना, ये कितनी सौभाग्य की बात है। और इस धरा पर इस सीजन में पहली बार हम बाबा का स्वागत करेंगे। वो पहले स्वागत का चांस भी हमें ही मिला है। मुझे याद है कि बाबा के साकार होते होते उस समय एक नया गीत बना था, नया नया गीत बना था, शिव स्वागत आज तुम्हारा, शिव स्वागत आज तुम्हारा, इस भारत के भूतल में, सृष्टि के आंचल में, हे शिव भगवान हम आपका स्वागत करते हैं। तो ये गीत रिकॉर्ड पर बज रहा था और उस समय साकार बाबा क्लास में पहुंचे थे। तो बाबा ने कहा था कि बच्चे शिव स्वागत आज तुम्हारा, तो बच्चे बाप का स्वागत कैसा करेंगे? क्या कोई गुलाब का फूल या गुलदस्ता देकर बाप का स्वागत करेंगे? तो बाबा का स्वागत कैसे किया जाता है? तो उनको याद करके बाबा का स्वागत किया जाता है। और वो चांस हमें मिला है क्योंकि हमारी पुण्य की गठरी बहुत बड़ी है। शायद अगर कुछ कम रहा होगा तो उसको पूरा करने के लिए हम इस सेवा के टर्म में पहुंचे हुए हैं। तो हम जो ईश्वरीय सेवा करते हैं, तो सेवा का भी इस ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। सेवा जो है, सेवा ब्राह्मण जीवन का श्वास है। अगर श्वास न चले तो जीवन समाप्त तो हो जाता है। उस प्रकार से ब्राह्मण हो और उसे सेवा न मिले तो उसका ब्राह्मण जीवन ही समाप्त हो जाता है। इसलिए सेवा ब्राह्मण जीवन का श्वास है और सेवा करने का चांस मिलना ये भी पुण्य जमा करने का चांस है। पुण्य जमा करने का भी चांस मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। कई बार परिस्थिति जो है या समय जो है, वो समय हमें मौका देता है, समय हमें देता है मौका, लेकिन हमें लगाना है चौका। ऐसे ही आउट नहीं होना है, हमें तो चौका लगाना है। वो हमारे हाथ में है, मौका देना समय के हाथ में है और चौका लगाना हमारे हाथ में है। फुल ऐसी सेवा करो, ऐसी सेवा करो कि एक एक आत्मा संतुष्ट हो जाए। बाबा ने सेवा के तीन तरीके बताए हुए हैं कि आप सेवा तीन रूप से कर सकते हैं। एक तो है मनसा सेवा, दूसरी है वाचा की सेवा और तीसरी है कर्मणा की सेवा। तो मनसा सेवा हम करेंगे तो उसके लिए हमें चाहिए पावरफुल स्थिति। पावरफुल स्थिति होंगी तो मनसा की सेवा कर सकेंगे। अगर हम नॉलेजफुल होंगे तो हम वाचा की सेवा कर सकेंगे। और अगर हम लवफुल होंगे तो हम कर्मणा की सेवा कर सकेंगे। तो मनसा सेवा के लिए पावरफुल होना अत्यंत आवश्यक है। मनसा जो है हमारी इतनी शक्तिशाली चाहिए। हम योगी तो है, लेकिन योग के साथ अभी का जो समय चल रहा है वो सिर्फ योगी बनने का समय नहीं है। अभी तो योग के प्रयोग करने का समय है, योग का प्रयोग करना चाहिए। वैसे तो बाबा ने हमें चार सब्जेक्ट इस पढ़ाई में दिए हुए हैं और वो चार सब्जेक्ट है ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो इन विषयों का भी आपस में बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो ज्ञान का जो कनेक्शन है वो सेवा के साथ है और योग का जो कनेक्शन है वो धारणा के साथ है। इस प्रकार से ज्ञान के कनेक्शन के द्वारा हम सेवा कर सकते हैं और योग के कनेक्शन के द्वारा हम धारणा कर सकते हैं। योग के द्वारा हमें शक्ति प्राप्त होती है और वो मनसा शक्ति हम मनसा सेवा में प्रयोग कर सकते हैं। या आप प्रयोग करो, सिर्फ योग नहीं करते रहो। हमारा योग एक्चुअली लग रहा है वह योग के द्वारा हमें कुछ सिद्धि प्राप्त हुई है, हमें कुछ शक्ति प्राप्त हुई है, उसका प्रमाण आपके पास क्या है? इतना तो हम अमृत बेला योग करते हैं, क्लास में मुरली के समय योग करते हैं, योग की भट्टियां भी करते हैं, लेकिन सचमुच आपके पास कितने परसेंटेज में योग की शक्ति जमा हुई है उसको कभी आपने जांच करके देखा है? अभी का समय तो योग के प्रयोग करने का है और आगे चल करके आपको प्रैक्टिकल योग के प्रयोग करने पड़ेंगे। सिर्फ आपको बैठ करके योग करने का चांस नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज अचानक का पाठ जो है वो बाबा ने पिछले साल में हम सभी को इतना पक्का कराया कि बार बार अनेक वाणियों ने बाबा ने यही कहा कि बच्चे अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है और उसके लिए क्या करना चाहिए, तो एवर रेडी रहना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? एवर रेडी रहना इसका अर्थ है कि ड्रामा के पटरी पर फिट रहने का है। अगर हलचल वाली परिस्थिति आ भी जाती है तो भी हमें अचल रहने का है। ये बाबा ने हमको पहले से ही पढ़ा करके रखा था और उस अनुसार किसी के बुद्धि में भी ये नहीं था कि ड्रामा अनुसार बाबा का सारा प्रोग्राम भी बना। और प्रोग्राम बनते ही बाबा शुरू में ही नहीं आएंगे ये किसके बुद्धि में भी नहीं था और ऐसे कभी हुआ भी नहीं था। ड्रामा में ऐसा कभी पाठ बजा ही नहीं था, किसी भी हालत में बाबा पहुंच तो जाते थे। लेकिन ये अचानक बाबा ने हमारा पेपर लिया, अचानक का पाठ हमारे सामने आया, तो हमें इसलिए एवर रेडी रहना पड़ा। ये तो इस रूप में संगम पर अचानक का पाठ आया, इस कलयुगी दुनिया में प्रकृति के रूप में भी अचानक का पाठ आ सकता है, माया के रूप में भी अचानक का पाठ आ सकता है। हमारे हरेक आत्मा का अपना अपना कर्म का खाता होता है, हरेक का अपना अपना कर्म का बंधन होता है और वो कर्म बंधन का भी समय होता है, विशिष्ट समय पर ही वो कर्म बंधन सामने आता है। जब पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं, पुण्य कर्म जब क्षीण हो जाते हैं तो पाप का फोर्स बढ़ जाता है। जो पाप कर्म का फोर्स है वो बढ़ जाता है और जब हमारे विकर्मों का समय, विकर्मों का खाता चुकतु होने का समय अगर हमारे सामने आता है तो उस समय हमारी बड़ी हलचल हो जाती है। उस समय ज्ञान मार्ग में चलने वाला बच्चा भी कहने लगता है कि पिताजी मुझे शादी करनी है, माताजी आपने मेरे शादी का क्या किया। कभी माता पिता ज्ञान में चलते हैं तो वो नहीं सोचते कि बच्चे की शादी करनी पड़ेगी, उनको तो संकल्प नहीं आता है। लेकिन बच्चा कह देता है कि आपने मेरा कभी विचार किया है, मेरे बारे में सोचा है, तो ये कभी न मन न चित्त शादी की बात माता पिता के सामने आ जाती है। तो ये कर्म का खाता जो है वो अचानक सामने आ जाता है और जब अचानक परिस्थिति सामने आती है तो अवस्था में बड़ी हलचल आ जाती है। तो उसके लिए हमारी स्थिति जो है वो स्थिति बड़ी मजबूत होनी चाहिए। ड्रामा के पटरी पर हमें बिल्कुल फिट रहना है और ड्रामा के पटरी पर फिट रहने के लिए तीव्र पुरुषार्थ के लिए बाबा ने इस समय जो इशारे किए हुए हैं, तो उसमें सबसे पहला इशारा जो बाबा ने किया है कि बाबा ने कहा है कि सेकंड में बिंदी लगाने को आना चाहिए। तीव्र पुरुषार्थ में कौन सी बातें आती है, तो पहली बात है सेकंड में बिंदी लगाओ। तो बिंदी लगाना कोई साधारण बात नहीं है। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है, ऐसी परिस्थिति निर्माण हो जाती है हमारे सामने कि बार बार न चाहते हुए भी वो परिस्थिति हमारे सामने दिन रात आ जाती है, अचानक परिस्थिति आ जाती है तो हम हलचल में आ जाते हैं। तो उस समय कोई भी बात हो उसको बिंदी लगाने को आना चाहिए और वो बिंदी हम नहीं लगा सकते हैं। बिंदी लगाना हमें बड़ा मुश्किल लगता है। वैसे तो बाबा ने कहा अगर आप चाहो तो सबसे आसान है बिंदी लगाना, और हम लगाते क्वेश्चन मार्क, हम क्वेश्चन मार्क लगाते रहते हैं और खुद हैरान हो जाते हैं। तो बिंदी लगाने के लिए एक सुंदर पॉइंट जो है वो बाबा ने हम बच्चों को दिया हुआ है। अगर आपको बिंदी लगानी है ना, तो बिंदी लगाने के लिए ये पॉइंट को आप रिवाइज करो बुद्धि में, तो बिंदी लगाना आपको बड़ा सहज हो जाएगा। और वो कौन सा पॉइंट है जो बाबा ने कहा है कि बच्चे जो बीत चुका वो अच्छा, जो बीत चुका वो अच्छा ही बीता, और जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, जो हुआ वो भी कल्याणकारी था, जो हो रहा है वो भी कल्याणकारी है, और जो होने वाला है वो उससे भी ज्यादा कल्याणकारी है। अगर ये पाठ आपने अच्छी तरह से पकड़ करके रखा है, अच्छा पढ़ करके इसको फिट किया है बुद्धि में, तो आपको बिंदी लगाना सहज हो जाएगा, क्योंकि जो हुआ है उसमें कल्याण है, और जो हो रहा है उसमें भी कल्याण है, और जो होने वाला है। व्यक्ति चिंता क्यों करता है? क्योंकि भविष्य से डरता है कि न जाने कल क्या होगा, आज तो ये हो रहा है कल क्या होगा, तो कल की चिंता में डूबे रहता है, उसका मुखड़ा ही चेंज हो जाता है। जब कोई उसका मुखड़ा देखते हैं तो पता पड़ जाता है, कहते हैं भाई क्या आप बीमार हो क्या, बहन जी तबीयत तो ठीक है ना, तो तबीयत तो बहन जी की ठीक है, लेकिन मुखड़ा क्या हुआ है, मुरझा हुआ है, क्यों? क्योंकि भविष्य की चिंता, न जाने कल ये सबको पता पड़ेगा, कल ऐसा कुछ होगा तो मैं क्या करेंगी या मैं क्या करूंगा, तो भविष्य की चिंता हमें लगी रहती है। एक बार एक व्यक्ति को पूछा गया, भाई आप रोते क्यों? मियां को पूछा गया, मियां रोते क्यों? तो मियां ने कहा, नहीं सूरत ही ऐसी है, रोता नहीं हूं लेकिन क्या करूं, सूरत ही ऐसी है, क्योंकि आज के मनुष्य की सूरत ऐसी ही बनी हुई है, और बाबा ने तो हमें प्रसन्न रहना सिखाया है। और ये पाठ अगर हमारा पक्का है कि भविष्य में जो कुछ होने वाला है वो हमारे कल्याण अर्थ होने वाला है, उसमें हमारा कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि हम भविष्य को यथार्थ रीति नहीं जानते हैं, हम तो सिर्फ वर्तमान को जानते हैं, इसीलिए तो हमें आत्मा कहा गया है। जो वर्तमान को जानता है उसे आत्मा कहा जाता है, जो आज को जानता है उसे आत्मा कहा जाता है, और जो कल को जानता है उसे महात्मा कहा जाता है। जो आज को जानता है उसे आत्मा कहा जाता है, जो कल को जानता है उसे महात्मा कहा जाता है, और जो परसों को जानता है उसे परमात्मा कहा जाता है। तो परमात्मा तो परसों को भी जानता है ना, अरे हमारा आदि मध्य अंत बाबा अच्छी तरह से जानता है। और ड्रामा जो बना हुआ है, ये जो ड्रामा बना हुआ है वो हमारे फेवर में बना हुआ है, ये बात आप पक्की करो कि ये जो ड्रामा है ना वो हमारे फेवर में बना हुआ है, ये कभी भी हमारा अकल्याण कर नहीं सकता है। अगर हम देवता थे इसलिए ब्राह्मण बने हैं, देवता थे इसलिए तो ब्राह्मण बने हैं, और ब्राह्मण बने हैं इसका मतलब है कि हम देवता बनने वाले हैं। अगर हम देवता बनने वाले हैं ये फिक्स है, तो हमारी सफलता भी फिक्स है, हमारा यश भी फिक्स है, हमारे भविष्य का कल्याण भी फिक्स है। तो जिसका भविष्य का कल्याण फिक्स है, निश्चित है, उसे भविष्य की चिंता करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन ड्रामा को यथार्थ न जानने के कारण, बाबा के ज्ञान के ऊपर संपूर्ण निश्चय न होने के कारण हम दुखी बनते हैं, वरना ब्राह्मण जीवन में दुखी बनने का कोई कारण ही नहीं है। हर बात का ज्ञान जो है वो बाबा ने हम बच्चों को दिया है, और भाग्य विधाता को बहुत अच्छी तरह से पता है कि बच्चों का भाग्य कैसे बनाना है, देखो भगवान के पास कैसी कैसी युक्तियां हैं कि उसने हमारा हर कर्म में हजार गुना भाग्य बनाया है। भक्ति मार्ग में तो हम दान पुण्य आदि करते थे, भक्ति मार्ग में भी सेवाएं आदि करते थे, सोशल वर्क वहां भी होता है, भक्ति में भी दान पुण्य होता है और इस संगम पर भी हम दान पुण्य करते हैं, लेकिन दोनों के प्राप्तियों में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों प्राप्तियों में एक तो बहुत बड़ा अंतर ये है कि भक्ति मार्ग में अगर आपने कुछ दान पुण्य किया, भक्ति में अगर दान पुण्य किया तो आपका जो संबंध है वो आत्मा का आत्मा के साथ होता है। भले पुण्य का संबंध क्यों न हो, आत्मा का आत्माओं के साथ संबंध होता है। भक्ति मार्ग में जो भी किया है आत्माओं का आत्मा के साथ कर्म बंधन बना हुआ है। और इस संगम की ये विशेषता है, इस संगम की ये विशेषता है कि हम जो भी कुछ पुण्य कर्म करते हैं, जो भी कुछ दान पुण्य करते हैं, जो भी कुछ सेवा करते हैं, हमारा टोटली सारे का सारा कनेक्शन जो है, सारे का सारा जो खाता है वो डायरेक्ट परमात्मा के साथ बनता है। हमारा कोई आत्मा के साथ कनेक्शन बनता ही नहीं है। इस संगम पर जो भी कर्म का खाता तैयार होता है वो डायरेक्ट परमात्मा के साथ होता है। यहाँ भी अभी हम जो भी कुछ सेवा करते हैं तो सेवा का कनेक्शन परमात्मा के साथ है, उनसे हमारा संबंध जुड़ जाता है। और अगर परमात्मा से हमारा कनेक्शन है तो ही परमात्मा हमको समय पर मदद कर सकता है, वरना समय पर परमात्मा मदद नहीं कर सकता है। मदद करने के भी परमात्मा के कुछ नियम है, ऐसे ही नहीं है कि हमने मांगा और उसने दिया। भगवान भी बड़ा चाणाक्ष है, बड़ा होशियार है परमात्मा भी, कि वो पहला लेता है और फिर देता है, पहला लेता है और फिर देता है, लिए बिना वो देता नहीं है। वैसे तो पहले भी सुदामा उसका मित्र ही था ना, शत्रु थोड़े ही था, पहले भी उसका मित्र ही था, लेकिन बेचारा झोपड़ी में पड़ा रहता था, उसको खाने को भी अनाज नहीं था और उसको सारा पंच पकवान का भोजन को वह सोने का महल भी भगवान ने दिया है, लेकिन कब दिया? जब उसका मुट्ठी भर चावल खाया तब उसने दिया है। तो पहला खाएगा और फिर देगा, ऐसे नहीं समझना कि वो देते ही रहेगा। तो कहाँ न कहाँ कुछ देना पड़ता है। जो भक्ति मार्ग में सुंदर उदाहरण है कि जब उसकी उंगली कटी थी भगवान की, समझा ना उदाहरण है, द्रौपदी ने भरे दरबार में कौरव और पांडवों की बड़ी सभा लगी हुई थी और भरी सभा में जो दुर्योधन था उसने अपने भाई दुशासन को ये ऑर्डर किया कि द्रौपदी के वस्त्र निकाल दो भरे दरबार में, और वो भी उनकी संबंधी थी ना द्रौपदी, तो उसके वस्त्र हरण करने के लिए जब दुशासन को कहा तो उस समय द्रौपदी ने कईयों को पुकारा हुआ है। उसने भीष्म पितामह को पुकारा कि आप मेरे ससुर हो और इस घराने के पितामह हो, तो आपके सामने मेरी इज्जत लूटी जा रही है, तो आप मुझे मदद करो। तो उस समय भीष्म पितामह ने क्या किया, तो उन्होंने मुंडी नीचे डाली और कहा क्या करूं, मैं दुर्योधन का अन्न खाता हूं, यह अन्न बड़ा खतरनाक चीज है, समझा, यह अन्न कब धोखा देगा ये बोल नहीं सकते। इसने भीष्म पितामह को भी धोखा दिया तो द्रोणाचार्य को भी दिया, द्रोणाचार्य को भी पुकारा द्रौपदी ने कि आप कौरव पांडवों के गुरु भय हो और आपके जो शिष्य है वो ये क्या कर रहे, मेरी इज्जत ले रहे, मुझे बचाओ। तो द्रोणाचार्य ने भी कहा कि क्या करूं, नीचे मुंडी डाली और कहा कि मैं दुर्योधन का अन्न खाता हूं। वो कुछ कर नहीं सका। अर्जुन को कहा आप इतने बड़े धनुर्धर हो, आप मुझे बचाओ, तो अर्जुन ने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता, भीम को पुकारा, उसने भी नीचे मुंडी डाली। जब सारे दरबार में कोई न कौरव बचा सका न पांडव बचा सका, उस समय द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। उस समय भगवान को उसने पुकारा, और जैसे ही भगवान को पुकारा तो भगवान ने मदद करना शुरू किया। भगवान ने कहा, हे द्रौपदी, तू अगर पहले मुझे पुकारती तो तेरा इतना हाल होता ही नहीं था। तूने क्या किया, मेरा नंबर लास्ट में लगाया। मैं क्या करूं, मैं तो रास्ता देख रहा था कि कब मेरा नंबर आता है, कब मैं मदद करूं, लेकिन तू सबको पुकारती रही इसलिए मैं कुछ नहीं कर सका। इसलिए हमारे सामने भी जब कोई, बाबा कहते ना आप ही द्रौपदियां हो, आपके सामने जब कोई भी समस्या आ जाती है तो समस्या के समय पहले पहले शिव बाबा को याद करना चाहिए। हमारे विधि में गड़बड़ हो जाती है, जब हमारे सामने परिस्थिति अथवा समस्या आ जाती है तो हम क्या करते हैं, पहले पहले रिश्तेदारों को याद करते हैं। अगर आज मेरा दोस्त होता तो कितना अच्छा होता, भाई को पुकारेंगे, बच्चे को याद करेंगे, पिताजी को याद करेंगे, माताजी को याद करेंगे, दोस्त को याद करेंगे। और जब कोई भी मदद नहीं करेंगे उस समय कहेंगे शिव बाबा मुझे मदद करना, तो बाबा भी क्या करें। तो विधि है कि पहले ही बाबा को याद करना चाहिए, और याद करने के बाद बाबा ने ये हमको गारंटी की हुई है, साधारण बात नहीं है, भगवान ने गारंटी दी है कि हे बच्चे सिर्फ कहो मेरा बाबा। क्या कहो, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, और बाबा हाजिर हो जाएगा। ये बाबा ने गारंटी की हुई है, तो ऐसे बाबा को तो झट याद करना चाहिए। और बाबा तो मदद के लिए बंधा हुआ है, क्यों, क्योंकि हमने बाबा के यज्ञ में सेवा की हुई है। द्रौपदी को भी भगवान ने इतने सारे जो वस्त्र दिए हैं वो क्यों दिए हैं, क्योंकि कहते जब उसकी करंगली कटी हुई थी, जब खून बह रहा था, तो उस समय द्रौपदी भी थी और सुभद्रा भी थी। सुभद्रा द्रौपदी दोनों भी थे, तो सुभद्रा क्या करती रही, वो महल में चिंदी ढूंढती थी कि चिंदी कहाँ मुझे मिलती है, क्या मैं बेट बोट के ऊपर लगा दूं। वो तो चिंदी ढूंढ रही थी, और उस समय द्रौपदी ने क्या किया, उसने अपनी साड़ी को चीर दिया, अपने साड़ी को चीर दिया और उसकी चिंदी बना करके भगवान के अंगुली को लगाई। तो भगवान ने कहा कि हे द्रौपदी, तेरी चिंदी मेरे पास बैंक बैलेंस है, क्या मेरे पास बैंक बैलेंस है। और वो चिंदी के एक एक धागे की एक एक साड़ी करके भगवान ने उसको रिटर्न दिया है। तो कहां न कहां चिंदी देनी पड़ती है तब साड़ियां मिलती है, ऐसी साड़ियां नहीं मिलती है। इसीलिए सेवा का मौका है, भगवान को चिंदी देने का मौका है, भगवान के साथ कर्म का खाता क्रिएट करने का मौका है। ऐसे ही बाबा नहीं कहेगा, कहो मेरा बाबा, तो बाबा के लिए कुछ किया है तो उसके लिए मौका भी तो मिलना चाहिए। हमको ये सेवा का बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है, तो ये तो कर्मना सेवा का चांस अभी इस समय मिला हुआ है। और हमें बार बार बाबा चांस देता है, कर्मना तन से सेवा करने का चांस देता है, मन से सेवा करने का चांस देता है, धन से सेवा करने का चांस देता है, धन से भी सेवा करने का चांस देता है ना। नहीं तो अगर बाबा ने अगर संकल्प किया, उसने अगर चावी घुमाई ना धनवान लोगों की, उसके बुद्धि की चावी अगर बाबा ने घुमा दी तो यहाँ करोड़ों अरबों रुपया जमा हो जाएगा। अरे साई बाबा इतना कर सकता है तो क्या शिव बाबा नहीं कर सकता क्या, हा? शिव बाबा तो अवश्य कर सकता है, उनके लिए कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। लेकिन अगर वो लखपति करोड़पति अगर करेंगे तो हमारा भाग्य कैसा बनेगा, समझा, हमारा तो कोई भाग्य नहीं बनेगा। तो हम सभी का भाग्य बनाने के लिए बाबा उनकी चावी नहीं खोलता है, उनका ताला बंद ही रखा है उन्होंने, समझा। क्योंकि हमारे को भाग्य बनाने को चांस चाहिए, इसीलिए ये मौके आते हैं आपको भाग्य बनाने के लिए। धन से आते हैं, धन से सेवा करने का चांस मिलता है, मन से भी अभी सेवा करने का समय है। अभी मनसा सेवा का समय फिक्स करो, ये बाबा ने पिछले सीजन में भी कहा है कि ऐसा जब मन में आएगा तब मन से मनसा सेवा नहीं, उसका भी टाइम फिक्स करो। समझो सवेरे 4:15 से 4:45 तक हम अमृत वेला करते हैं, तो 4:15 से 5 बजे तक 15 मिनट के लिए मनसा सेवा का भी टाइमिंग हम फिक्स कर सकते हैं। मनसा सेवा बहुत बड़ा काम करती है। मैं आपको प्रैक्टिकल कुछ अनुभव सुनाऊंगा, खाली क्लास नहीं कराता, एक अनुभव सुनाता है कि एक अपने क्लास में, हमारे क्लास में एक भाई आता था, कुमार भाई था, अच्छा कंप्यूटर इंजीनियर था, बहुत अच्छी सेवा करने वाला और बाबा के ऊपर कुर्बान होने वाला, बहुत अच्छा भाई, अच्छा कुमार था, रात दिन सेवा करता था और कई बार आधा पे लेकर के भी बाबा की सेवा में सेवा करता रहा। लेकिन कुछ दिन से देखा था हमने कि वो कुमार सेंटर पर आता ही नहीं था। 15 दिन हुए, 1 मास हुए, 2 मास हुए, 3 मास हुए, मेरा भी संकल्प चलते रहा कि भाई इतना अच्छा कुमार, उसको क्या हुआ है, कोई बता भी नहीं रहा था क्या हुआ है। मेरा तो तीव्र संकल्प चलने लगा, कई बार अमृत वेले को 4:45 के बाद मैंने उस कुमार को सामने लाया, इमर्ज किया और मैंने संकल्प किया कि आपको सेंटर पर आना ही है, आपकी इतनी पुण्य की गठरी जमा है, आप क्यों नहीं आते, क्या हुआ है, हो सकता है कहाँ कुछ लेन देन में नीचे ऊपर हुआ हो, हिसाब किताब कुछ बहनों से कुछ थोड़ी सी टक्कर भी हुई हो। मैं एक बात अनुभव से जरूर कहूंगा आपको कि आपको अगर संगम का थोड़ा समय अच्छी तरह से सफल करने का है तो कृपया किसी से टक्कर होने नहीं देना। हमारी गाड़ी संगम पर न्यू ब्रांड रहनी चाहिए, अगर किसी से अगर टक्कर खाई ना तो गाड़ी गई काम से, समझो। उसको फिर दुरुस्त करना पड़ेगा, गैरेज में लेकर के जाना पड़ेगा, और जिस गाड़ी का एक बार एक्सीडेंट हुआ है ना वो हमेशा कर कुरकुर करती ही रहेंगी, वो कभी सीधी चलने वाली नहीं है। तो सेफ बात है कभी किसी से टक्कर नहीं खाने का। जब टक्कर का समय आ जाता है तो बाजू के साइड से चला जाओ, समझा, या तो रिवर्स घेर ले लो। अपने गाड़ी को संगम पर रिवर्स घेर की बहुत आवश्यकता है। जब तक आपकी 2-व्हीलर थी ना तो रिवर्स घेर की कोई जरूरत नहीं थी। अभी बहुत समय आप ध्यान मार्ग में चले हो तो आपको 4-व्हीलर मिली है तो 4-व्हीलर में ये अरेंजमेंट अवश्य चाहिए, और होता है कि उसको रिवर्स घेर होता है। हमें कई बार ये संगम पर चलते चलते रिवर्स घेर भी लेना पड़ता है। अगर रिवर्स नहीं लिया तो 100% एक्सीडेंट होने की संभावना है। तो जब देखते हो कि भाई अभी एक्सीडेंट होने की संभावना है तो झट रिवर्स ले लो और अपनी गाड़ी को पीछे करो, सेफ रखो, और समय आने पर भले टॉप गियर लगा के आगे चले जाओ। गाड़ी को भी संगम पर चलाने को आना चाहिए। हमेशा फास्ट गाड़ी चलाने वाला कभी भी धोखे में आ सकता है। कभी कभी स्पीड को थोड़ा लो करना भी बड़ा कल्याणकारी होता है। तो इस ढंग से संगम पर गाड़ी को चलाना है। सेवा जब हम करते हैं तो उस समय भी कोई छोटी बात भी हमें कारण बन जाती है। क्लास में मास मास 2-2 मास आना छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? कारण पूछा तो कहा कि भाई गुरुवार को सबको भोग मिला और मेरे को भोग ही नहीं दिया। अरे तेरे को भोग नहीं दिया तो आप मांग करके ले सकते हो, भोग के ऊपर सभी का अधिकार हो सकता है। बाकी के समय मुख खुलता है तो भोग मांगने के लिए खुला तो क्या हर्जा है, मांग करके ले सकते, लेकिन वो मांगेंगे नहीं और अंदर अंदर रूठ जाते हैं और मास मास क्लास छोड़ देते। अरे भगवान का घर छोड़ने के लिए, भगवान का घर छोड़ने के लिए बहुत बड़ा कारण होना चाहिए ना। लेकिन जब प्रैक्टिकल देखते हैं तो छोटा छोटा कारण कि बहन जी ने सबको पूछा और मेरे को नहीं पूछा और मेरी गाड़ी पंचर हो गई। अरे किसी के हाथ में आप अपना रिमोट क्यों देते हो? हमारे अवस्था का रिमोट जो है वो भाई बहनों के हाथ में क्यों देते हो? तुम्हारे अवस्था का रिमोट तुम्हारे हाथ में चाहिए। क्या ताकत है सामने वाले की आपकी अवस्था को गिराने की? अगर उसको मालूम हुआ ना ये कमजोर है तो कमजोर बात हमारे सामने लाएगा और हम मुरझा जाएंगे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए। तो मनसा सेवा के लिए पावरफुल स्थिति होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, अमृत बेला के बाद उस आत्मा को इमर्ज किया और मैंने कहा कि आपको क्लास में आना ही है और मुझे आपका घर कहाँ है वो लौकिक घर तो मुझे मालूम नहीं है, भले आज मैं क्या करूंगा कि आपके लौकिक घर का भी पता ढूंढ के निकालूंगा। लौकिक घर में क्यों न हो मैं आपके आऊंगा और आपको वहां से सेंटर पर अवश्य लेकर के आऊंगा। ऐसा मैंने तीव्र संकल्प किया और ऐसा संकल्प करने के बाद जब हम सेवा पर गए और जब मैं दो दिन के बाद आया क्लास में तो देखा कि वो भाई क्लास में बैठा हुआ था। वो भाई क्लास में बैठा हुआ था, मुझे उसके घर को जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, उसका घर का ये ढूंढने की जरूरत पड़ी नहीं, न उसे कुछ समझाने की आवश्यकता पड़ी। खाली पावरफुल संकल्प किया, शुद्ध शक्तिशाली भावनाएं जो होती है वो भावनाएं भी बहुत बड़ी काम करती है। तो ऐसी मनसा सेवा को भी हमने उसको खींच करके लाया तो ये ला सकते हैं ना। अगर मैंने योग लगाया हुआ है, अगर मेरी योग की इतनी समय की तपस्या है तो क्या मैं एक भाई को खींच के नहीं ला सकता हूँ? अवश्य ला सकते हैं। तो ऐसे योग के अनेक प्रयोग हमको वर्तमान समय में करने चाहिए। अगर अंतिम समय पर आप पर प्रयोग करने जाएंगे और वो प्रयोग सक्सेस नहीं हुए तो क्या करेंगे? उसके लिए ट्रायल एंड टेस्ट जो है अभी से करना शुरू करो, प्रयोग करते जाओ, आपको बाबा बड़ी सफलता देता जाएगा। तो इस प्रकार से ये सेवा के कारण हमें ये बल भी प्राप्त होता है। तो ये मनसा सेवा भी हम कर सकते हैं वर्तमान समय में। अरे शुद्ध संकल्प रखो और शुभ भावना और शुभ कामना के द्वारा हम मनसा सेवा कर सकते हैं। मनसा सेवा के ये दोन बहुत बड़े साधन है, कौन से? शुभ भावना और शुभ कामना। भले शत्रु भी क्यों न हो, अगर उसको मित्र बनाने का है तो उसको लगातार शुभ भावना देते रहो, लगातार शुभ कामना उसको देते रहो। बाबा ने कहा है अरे कमजोर आत्मा जो है तो कमजोर के ऊपर आपको रहम आना चाहिए, कमजोर के ऊपर तो रहम आना चाहिए। तो अगर वो कमजोर आत्मा है तो हमें उसके प्रति ग्लानी का भाव नहीं निर्माण होना चाहिए, द्वेष भावना नहीं निर्माण होनी चाहिए, बल्कि रहम की भावना निर्माण होनी चाहिए। देखो रास्ते से हम जाते हैं, अगर कोई व्यक्ति ने आपको जोर से धक्का मारा, आपका मुंह आगे का पीछे हो गया, इतना जोर से धक्का मारा, तो हो सकता है आपको बड़ा क्रोध आ जाए, लेकिन जब आपने मुड़ के देखा तो जिसने जोर से धक्का मारा वो व्यक्ति कौन था? वो एक अंधा व्यक्ति था। कौन था? एक अंधा व्यक्ति था। तो भले आपको इतने जोर से धक्का मारा लेकिन आपको गुस्सा नहीं आता है, और ये क्या होता है, रहम दिल में पैदा होती है कि अरे बेचारा क्या है, अंधा है, इसको तो क्या करना चाहिए, अच्छा रास्ता दिखाना चाहिए। तो और ही उसकी लाठी पकड़ करके हम उसको रास्ता दिखाते। उसी ही प्रकार से अगर किसी के अंदर कोई विशेष कमी कमजोरी है तो उसके प्रति घृणा अथवा देश भावना निर्माण होने के बदले उसके प्रति अगर रहम की भावना निर्माण होती है तो पहली होनी चाहिए रहम की भावना, और रहम के बाद फिर होती है शुभ भावना और शुभ कामना। और शुभ भावना शुभ कामना महान आत्मा ही कर सकती है, कोई सामान्य आत्मा का काम नहीं है कि शत्रु के प्रति भी शुभ भावना रखना। बाबा ने तो हमें ये सिखाया है कि जो आपको पत्थर मारता है उसके ऊपर क्या करो, फूल की वर्षा करो, ये बाबा ने हमको सिखाया है। तो उसके लिए हमें महानता धारण करनी पड़ती है तो शुभ भावना निर्माण होती है। मैं प्रैक्टिकल में कहता हूँ कि शुभ भावना ये कितनी बड़ी चीज होती है। एक बार क्या हुआ, एक बार मैं एक अपने ज्ञानी भाई के साथ उनके गांव में गया था, वहां कार्यक्रम हुआ तो उस ज्ञानी भाई ने मुझे अपने घर में लेकर के गया, बड़े प्रेम से घर में लेकर के गया। और घर को जाते समय, जाते जाते वो भाई ज्ञान में 20-25 वर्ष से चल रहा था, पुराना अच्छा भाई था, तो इतना पुराना अच्छा धारणा युक्त भाई था। और वो जाते जाते घर चलते चलते उसने मुझे एक हिंट दिया। क्या हिंट दिया, उसने हिंट दिया कि देखो अभी आप घर में हमारे जाएंगे ना तो मेरे छोटे भाई को जरा समझाना। मैं बोला क्या समझाऊं, तो वो बोला कि वो बड़ा खाने पीने वाला व्यक्ति है, कितना भी समझाओ बिल्कुल खाने पीने वाला, बड़ा झगड़ा करने वाला और चेन स्मोकर है, हमेशा सिगरेट पीते रहता है, माँ बाप को दुख देता है, उल्टा बोलते रहता है। अभी बोले क्या मेरा कर्म का भोग, क्या कहाँ से मेरा कर्म का भोग कि मुझे ऐसा भाई मिला, समझा, क्या मेरा कर्म भोग होगा जो मुझे ऐसा भाई मिला। ऐसा उसने बताया, आप उसको समझाओ। इस प्रकार से जब हम उनके घर में गए, उनके घर में जाने के बाद देखा माँ बाप भी बैठे थे, वो भाई भी आया बाहर से। जब वो छोटा भाई उसका आया तो वो छोटा भाई आया उसको देखकर ये जो ज्ञान में चलने वाला बड़ा भाई था वो बोला मैं थोड़ा सा फ्रूट लाता हूँ। और फ्रूट लाने के लिए वो बड़ा भाई मार्केट में गया, मैं अब भी फ्रूट लेके आता हूँ, वो मार्केट में गया। और जो छोटा भाई आकर के बैठा तो उसने हमें नमस्कार किया, बड़ा सम्मान दिया और कहा कि भाई जी ये मेरा बड़ा भाई जो है ना ये हमारे घर में एक देवता बनकर के अवतरित हुआ है और ये इतना गुणवान है कि कभी इसने व्यसन को टच भी नहीं किया है, कभी बीड़ी सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया है। और देखो मेरा इतना बड़ा भाग्य है कि मुझे ऐसा भाई मिला, क्या मुझे इतना बड़ा भाग्य है कि मुझे ऐसा भाई मिला। तो सोचो अभी शुभ भावना जो है वो ज्ञानी की है अथवा अज्ञानी की है, समझा, शुभ भावना किसके अंदर है। तो ये 20-25 साल चलने वाले के अंदर है या ज्ञान में न चलने वाले के अंदर है। तो ये शुभ भावना जो है ये बहुत बड़ी चीज है, ये अंदर से होनी चाहिए। तो हमारे प्रति भी अगर किस आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना अगर हमारे अंदर होती है तो हम मनसा सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सेवा से हमारा भाग्य बनता है, सेवा से हमारा पुण्य जमा होता है और सेवा का एक बल भी होता है। सेवा का बल जो है ना उस सेवा का बल समय पर काम में आता है। हम जो भी बाबा की सेवा करते कई बार हमारा ये एक आग्रह हो जाता है कि मैं इतनी बड़ी सेवा करता हूँ। आज का टॉपिक है सेवा और स्थिति का बैलेंस। सेवा और स्थिति का बैलेंस कब बिगड़ जाता है, जब हम एक सेवा बार बार सेवा करते हैं तो कई बार हम तंग हो जाते हैं और हम ये कहते हैं कि मैं ही क्यों मरूं, बार बार मैं ही क्यों मरूं। अरे मरने का टाइम है, तुम क्यों, सभी को मरना है। लेकिन हमें थोड़ा देहंकार आता है, माया आती है कि बार बार मुझे ही करना पड़ता है और मैं इतनी सेवा कर रहा हूं कि मेरे तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। और किसका तो जाने दो, हमारे टीचर का भी ध्यान नहीं है। अरे टीचर का ध्यान देने की क्या आवश्यकता है, तेरे को सेवा का रिटर्न देने वाला कौन है, रिटर्न देने वाला तो बाबा है ना। अरे उसके नजर से वो ऐसा चुंबक है। बाबा ने कहा मैं ऐसा चुंबक हूँ, अगर कोई मेरे लिए एक पैसा भी खर्च करता है ना तो मैं उसका भी रिटर्न उसको दे देता हूँ, एक पैसे का भी रिटर्न वो देता है, छोड़ता नहीं है। तो तुमने इतनी सेवा की तो क्या बाबा तुमको रिटर्न नहीं देगा क्या? अरे अवश्य रिटर्न देगा। और सेवा का शुरू शुरू का पहला रिटर्न है कि तुम सेवा करो, तुमको खुशी मिल जाएगी। अगर आप अनुभव करके देखो, जब चलते चलते ज्ञान मार्ग में आप मुरझा जाते हैं, किसी से टक्कर हो गई है, थोड़ी मुरझाइश आ गई है, अप्रसन्नता हुई है, तो क्या करो, ये टेस्ट करके देखो, ये ट्रायल करके देखो। अगर मुरझा गए हो ना तो क्या करो, एक साधारण बात है, छोटी सी टैबलेट मैं आपको बता देता हूँ। जब आप मुरझा जाएंगे तो क्या करो, उठ जाओ उस स्थान से, उठ जाओ और कहाँ न कहाँ मंदिर में चले जाओ, किसी के भी पास जाओ और जाकर के किसी न किसी आत्मा को बाबा का ज्ञान सुनाओ। क्या करो, बाबा का ज्ञान सुनाओ। बस थोड़ा सा चेक करो, जैसे आज भी बाबा ने कहा ना, जो बिंचू होता है, समझा ना, बिंचू के अंदर ये बहुत बड़ा नॉलेज होता है कि डंक कहाँ मारने का है, तो कहाँ भी थोड़ी नरम जगह देख करके क्या करो, डंक मारो। थोड़ा सा सुनने वाला है ऐसा देख करके उसको ज्ञान सुनाओ, तो थोड़ा सा भी किसको 10 मिनट भी ज्ञान सुनाएंगे ना तो आप एकदम फ्रेश हो जाएंगे, आप हर्षित हो जाएंगे, कोई ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। अरे थोड़ी सेवा की तो खुशी का रिटर्न उसी समय इंस्टेंट खुशी आपको मिल जाएंगी। थोड़ी सी उसी समय सेवा करो, कोई कर्म ना सेवा करो, बाबा आपको खुशी दे देगा। तो इस प्रकार से सेवा से बल भी हमें प्राप्त होता है। और ये बाबा ने कहा हुआ है कि जो आप मेरे लिए सेवा करते हैं तो मैं भी बंधा हुआ हूँ समय पर आपको मदद करने के लिए। जो समय पर बाबा को मदद करते हैं, बाबा को जब आवश्यकता होती है, कोई प्रोग्राम होता है, बड़ा प्रोग्राम बनाया जाता है, तो ऐसे समय पर आपको अवश्य मदद करनी चाहिए, तन मन धन से अवश्य सहयोग आपको देना चाहिए। अगर ऐसे समय पर, प्रोग्राम के समय पर अगर आपने बाबा के कार्य में सहयोग दिया हुआ है तो भगवान भी बंध जाता है आपको, आपके समय पर, आपके समस्या के टाइम पर आपको सहयोग देने के लिए बाबा बंधा हुआ है। ये प्रैक्टिकल उदाहरण आपको बताता हूँ कि यज्ञ में जब बेगरी पार्ट चल रहा था, जब पाकिस्तान से भारत में आए तो कई सिंधियों ने कहा था कि हम यज्ञ को चलाएंगे, बाबा को कहा, क्योंकि उनकी किसी की पत्नी, किसी की बच्ची, किसी की माँ, किसी की बहन यज्ञ में थी, तो उन्होंने बाबा को कहा कि आप भारत में आओ, हम यज्ञ को चलाएंगे। लेकिन जब बाबा भारत में आए तो वो सभी लोगों ने ग्रुप किया और उन्होंने कहा अगर बाबा को हम मदद करेंगे तो हमारी बेटियां, बच्चियां, बहनें उधर ही रहेंगी, वो हमारे पास आएंगी नहीं, तो इस समय पर क्या करो, बाबा को मदद करना बंद करो। बाबा को अगर हम मदद नहीं करेंगे ना तो हमारी बच्चियां, बीबियां, बहनें सब ऑटोमेटिक क्या होंगी, हमारे पास चली आएंगी। तो उन्होंने बाबा को सहयोग देना बंद किया, यज्ञ में बेगरी का पाठ शुरू हुआ। तो ऐसे बेगरी के समय पर एक माता, जो कहा ना कि एक दिन ऐसा समय आया कि भंडारे में कुछ भी नहीं था, 12 बजे बाबा को भोग लगाने का था, तो भंडारी जो थी बार बार मम्मा के सामने आती थी, बाबा के सामने आती थी, अभी थोड़े समय के बाद, 2 घंटे के बाद भोग लगाने का है और भोग लगाने की कोई चीज भी भंडारे में नहीं है तो भोग कैसा लगाएंगे। तो भंडारी जो जी इंचार्ज बहन थी वो बार बार आती थी सामने, तो मम्मा बाबा समझ गए कि ये बार बार क्यों आ रही है, क्योंकि भंडारे में कुछ नहीं है और 12 बजे तो बाबा को भोग लगाने का है। तो बाबा ने कहा बच्ची संकल्प नहीं चलाओ, आखिर शिव बाबा है, बाबा कुछ न कुछ कर देगा। और बराबर थोड़े समय के बाद क्या हुआ, एक मनी ऑर्डर आई, 500 रुपए की उस समय मनी ऑर्डर आई और फट जाकर के मार्केट से सब सामान लाया और बाबा को बरोबर भोग के समय पर भोग लगाया गया। तो जिस माता ने वो मनी ऑर्डर भेजा था ना, तो एक बार क्या हुआ, कुछ एक 10-12 वर्ष के पहले वो माता जिसने बेगरी पार्ट के समय बाबा को पैसा भेजा हुआ था समय पर, तो वो माता एक 12 साल पहले मधुबन में आई थी अचानक अपने परिवार के साथ। वो माता का मधुबन में आना हुआ, तो अचानक जब वो माता मधुबन में परिवार के साथ आई, तो जब वो माता परिवार के साथ मधुबन में आई थी, बाबा को मिलने का था और दादी को मिलने के लिए भी आई थी, उस समय ऐसे सेवा का समय था, तो कुछ विशेष सेवा के लिए प्रकाशमणि दादी को बाहर जाना पड़ा था। बाहर प्रोग्राम के लिए प्रकाशमणि दादी गई हुई थी और उस समय गुलजार दादी यहाँ शांतिवन में थी। तो गुलजार दादी दोपहर के समय ऐसा भोग लगा रही थी, तो भोग लगाते समय ऐसे ही भोग लगाते समय अचानक क्या हुआ, अचानक बाबा ने प्रवेश किया। कोई प्रोग्राम नहीं था, कोई बात नहीं थी, अचानक बाबा ने प्रवेश किया। तो वो बाबा के सामने वो माता और उसका परिवार बैठा हुआ था, तो बाबा ने उस समय उनको बुलाया, उसको नजदीक बुलाया और बड़ा स्नेह दिया, प्यार दिया, टोली मंगा करके बाबा ने दिया। और उस समय सबको बड़ा आश्चर्य लगा कि बाबा का कोई प्रोग्राम नहीं, कुछ नहीं, बाबा कैसा क्या आया और बाबा ने इसको कैसा क्या बुलाया। तो उसको बुलाने के बाद टोली दिया, प्रेम दिया और बाबा ने कहा कि आज दादी भी नहीं है, भले आज दादी भी नहीं है, फिर भी बाबा जो है आज जो आया हुआ है, उस समय आई बेला पर आपने जो बाबा के यज्ञ में मदद की हुई थी, आई बेला पर आपने उस समय बाबा के यज्ञ में जो मदद की हुई थी, उसका रिटर्न देने के लिए आज बाबा आया हुआ है। तो इस प्रकार से उस समय अभी कितना साल हुआ था, क्या हुआ था, शायद वो माता भी भूल गई होंगी, वो माता भी भूल गई होंगी, लेकिन भगवान भूला नहीं था, समझा। भगवान ने प्रोग्राम बना करके आ करके उसको उसके कर्म का न चाहते हुए भी यहाँ पर ही रिटर्न दिया हुआ था। तो इस प्रकार से बाबा के नजरों से हमने जो सेवा की हुई है, वो सेवा बाबा के नजर से कभी भी छूट नहीं सकती है। इसलिए कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम जो सेवा कर रहे हैं कोई का ध्यान ही नहीं है, हमने जो भंडारी में इतना किया है कोई हमको सम्मान ही नहीं दे रहा है। अगर इधर सम्मान लिया तो उधर सम्मान नहीं मिलेगा। अगर ऐसा यहाँ सम्मान वाले लोगों, जब बाबा के सामने ऐसे भाई बहन आते थे ना, तो बाबा उनको क्या कहते थे मालूम है, जो कुछ यज्ञ सेवा करने के बाद बार बार बाबा के सामने आते थे और उनकी इच्छा होती थी कि बाबा हमारा नाम लेवे, तो बाबा उनको क्या कहते थे, ये सस्ते नौकर है, क्या है, सस्ते नौकर चाकर है, ये सतयुग में जाकर के नौकर चाकर बनने वाले है, क्योंकि इनको मान पान की भीख चाहिए, तो ये सस्ते नौकर है। इसीलिए कभी भी सस्ता नौकर नहीं बनना है, पूरा वर्षे का अधिकारी बनना है, पूरा वर्षे का मालिक बनना है। तो इस प्रकार से हम पूरा वर्षे का हकदार बनेंगे और मालिक बन के रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।